एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ खेल बल्कि पॉप कल्चर पर भी एक अमिट छाप छोड़ी।
जी हाँ, बात हो रही है ESPN और नेटफ्लिक्स की बेहद मशहूर डॉक्यूमेंट्री सीरीज द लास्ट डांस।
जी हाँ, और ये साफ करना जरूरी है, ये कोई किताब नहीं है।
हाँ बिल्कुल, ये 2020 में आई थी, 10 हिस्सों की एक डॉक्यूमेंट्री, और ये हमें ले जाती है सीधे 90 के दशक की शिकागो बुल्स टीम के अंदर,
खास तौर पर उनका वो आखिरी चैंपियनशिप सीजन 1997-98 वाला,
वही जिसे कोच फिल जैक्सन ने मतलब सीजन शुरू होने से पहले ही कह दिया था ये द लास्ट डांस है।
और इस सबके केंद्र में है माइकल जॉर्डन, मतलब बास्केटबॉल के इतिहास का शायद सबसे बड़ा नाम।
इसमें कोई शक नहीं, 6 बार NBA चैंपियन, 5 बार MVP, लीग के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, ये आंकड़े ही सब कुछ कह देते हैं।
लेकिन ये सीरीज सिर्फ उनके खेल के बारे में नहीं है ना, ये दिखाती है कि वो कैसे एक खिलाड़ी से बढ़कर एक ग्लोबल आइकन बने।
बिल्कुल, उनका असर कोर्ट के बाहर भी उतना ही था, और यही बात इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है।
हाँ, ये सिर्फ पॉइंट्स और स्ट्रेटेजी की बात नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये लीडरशिप की कहानी है, टीम डायनामिक्स की, वो बे इंतहा दबाव झेलने की
और शिखर पर बने रहने की जद्दोजहद, उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
हाँ, और ये भी कि कैसे महान साम्राज्य बनते हैं और फिर बिखर भी जाते हैं, लगातार महानता बनाए रखने की असली कीमत क्या है, वो इसमें दिखता है।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, माइकल जॉर्डन का सफर नॉर्थ कैरोलिना में, उनका बचपन।
हाँ, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना UNC, वहाँ कोच डीन स्मिथ के अंडर खेलना, एक लेजेंडरी कोच,
और वो NCAA चैंपियनशिप का फाइनल शॉट, वो तो आज भी याद किया जाता है।
हाँ बिल्कुल, वो जैसे एक झलक थी कि ये खिलाड़ी बड़े मौकों के लिए बना है, दबाव में कैसा प्रदर्शन करना है।
फिर 1984 में वो शिकागो बुल्स में आए, टीम उस वक्त कैसी थी?
अरे बुल्स तो संघर्ष कर रही थी, कोई बड़ी टीम नहीं मानी जाती थी, लेकिन जॉर्डन के आते ही मतलब फर्क दिखने लगा, टीम प्लेऑफ्स तक पहुंचने लगी।
उनकी अपनी प्रतिभा तो थी ही जबरदस्त।
हाँ, पर टीम को अभी लंबा सफर तय करना था, अकेले जॉर्डन सब कुछ नहीं कर सकते थे।
तो यहीं से वो टीम बिल्डिंग वाला दौर शुरू हुआ। स्कॉटी पिपिन का आना, वो कितना अहम था?
बहुत ज्यादा, पिपिन का ड्राफ्ट होना एक टर्निंग पॉइंट था। फिर आए कोच फिल जैक्सन
और उनकी वो मशहूर ट्रायंगल ऑफेंस रणनीति।
हाँ, वो एक बिल्कुल अलग तरह की खेलने की शैली थी जिसमें गेंद और खिलाड़ी लगातार मूव करते थे,
मतलब सिर्फ जॉर्डन पे निर्भर नहीं रहना था।
एग्जैक्टली, और फिर डेनिस रॉडमैन का टीम में जुड़ना, वो तो अपने आप में एक पूरी कहानी है, क्या किरदार थे वो।
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, वो डिट्रॉइट पिस्टन्स वाली राइवलरी, बैड बॉयज,
ओहो वो तो जैसे जंग थी। पिस्टन्स बहुत फिजिकल खेलते थे, उनका एक ही मकसद था, जॉर्डन को रोको,
वो जॉर्डन रूल्स।
हाँ बिल्कुल, और बुल्स को कई बार उनसे हारना पड़ा, बहुत बुरी तरह।
वो हार सिर्फ स्कोर की नहीं थी, है ना, वो दिमाग पर भी असर डालती होगी।
बहुत ज्यादा, एक मनोवैज्ञानिक बाधा बन गई थी पिस्टन्स, लेकिन फिर 1991 में आखिरकार उनको हराया।
वो जीत कितनी बड़ी थी।
वो सिर्फ एक सीरीज जीतना नहीं था, वो एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। वहीं से बुल्स के पहले चैंपियनशिप युग का दरवाजा खुला, पहला थ्रीपीट वहीं से शुरू हुआ।
और इसके बाद तो जॉर्डन दुनिया भर में स्टार बन गए, वो 1992 ओलंपिक्स की ड्रीम टीम।
हाँ, वो तो एक कल्चरल फिनोमिनन था, पूरी दुनिया देख रही थी।
पर इस शोहरत की अपनी चुनौतियां भी थीं, मीडिया का लगातार पीछे पड़ना, उनके जुए की आदतों पर सवाल उठना।
हाँ, वो काफी विवादों में रहे। उनका वो बयान भी था कि मुझे जुए की नहीं कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम है।
हाँ, वो उनकी पर्सनैलिटी दिखाता है,
जीतने की जिद,
हर चीज उनके लिए जैसे एक मुकाबला थी। लेकिन फिर 1993 में वो भयानक हादसा हुआ, उनके पिता जेम्स जॉर्डन की हत्या।
वो तो बहुत ही दुखद था।
उसका उन पर क्या असर पड़ा होगा?
जाहिर है बहुत गहरा, वो उनके बहुत करीब थे, और शायद इसी सब का नतीजा था कि 1993 में उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ले लिया।
हाँ, वो चौंकाने वाला फैसला था, वजह क्या बताई गई?
भावनात्मक थकान। हाँ, शारीरिक थकान
दोनों,
और पिता को खोने का गम भी, और फिर उनका वो बेसबॉल खेलने का फैसला बर्मिंगम बैरन्स के लिए,
वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
बिल्कुल, शायद वो उस दबाव से, उस लाइमलाइट से कुछ वक्त के लिए दूर जाना चाहते थे, खुद को फिर से ढूंढना चाहते थे।
लेकिन वो बेसबॉल वाला दौर ज्यादा चला नहीं।
नहीं, बेसबॉल में स्ट्राइक हो गई और फिर दुनिया को मिला वो दो शब्दों का फैक्स,
आई एम बैक।
हाँ, वापसी का ऐलान।
और क्या वापसी थी वो?
टीम फिर से बनी, डेनिस रॉडमैन अब उसमें थे
और 1995-96 का सीजन इतिहास बन गया। 72 जीत, सिर्फ 10 हार, रेगुलर सीजन का रिकॉर्ड।
और चौथी चैंपियनशिप अविश्वसनीय।
उसी दौर का वो मशहूर फ्लू गेम भी है 1997 फाइनल्स का।
हाँ, हालांकि सीरीज में दिखाया कि शायद वो फ्लू नहीं, फूड पॉइजनिंग थी।
हाँ, जो भी था, पर बीमार होने के बावजूद उनका वो प्रदर्शन कमाल था।
और उसी फाइनल में स्टीव कर का वो विनिंग शॉट।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि टीम में हर खिलाड़ी की भूमिका थी। जॉर्डन महान थे, पर टीम भी उतनी जरूरी थी।
सही कहा। और फिर आया वो आखिरी सीजन जिसके नाम पर ये सीरीज है, द लास्ट डांस 1997-98।
माहौल में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। टीम के जनरल मैनेजर जेरी क्राउस,
हाँ, उनके साथ खिलाड़ियों की बनती नहीं थी, खासकर जॉर्डन और पिपिन की। बिल्कुल, और क्राउस ने पहले ही कह दिया था कि कोच फिल जैक्सन का आखिरी साल होगा, चाहे वो चैंपियनशिप जीते या हारे।
मतलब टीम बिखरने वाली थी, ये तय था।
हाँ, और मुश्किलें भी कम नहीं थी। स्कॉटी पेपिन अपने कॉन्ट्रैक्ट से बहुत नाराज थे, खुलकर बोल रहे थे।
उनका वो गुस्सा सीरीज में साफ दिखता है।
हाँ, फिर डेनिस रॉडमैन, वो तो डेनिस रॉडमैन थे, कभी भी कुछ भी कर सकते थे। सीजन के बीच में लास वेगस चले गए थे।
हाँ, वो भी एक किस्सा है।
जेरी क्राउस और खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था, जैसे सब कुछ फटने को तैयार हो।
तो ये सीजन सिर्फ कोर्ट पर नहीं खेला जा रहा था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट के बाहर की लड़ाइयाँ, भावनाएं, वो सब भी उतना ही अहम था। टीम को पता था कि ये उनका साथ में आखिरी मौका है।
और इसी माहौल में इंडियाना पेसर्स के खिलाफ वो मुश्किल सीरीज जीती, 7 मैचों तक गई थी।
हाँ, रेजी मिलर और पेसर्स ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी।
और फिर फाइनल दोबारा यूटा जैज के खिलाफ।
और गेम 6 का वो आखिरी मिनट, वो तो मतलब बास्केटबॉल इतिहास का शायद सबसे आइकॉनिक मोमेंट है।
पहले वो लेअप, फिर डिफेंस पर कार्ल मलोन से बॉल छीनना,
और फिर ब्रायन रसेल पर वो क्रॉसओवर।
हाँ।
और शॉट,
द शॉट, छठा टाइटल, एक युग का क्या शानदार अंत था।
परफेक्ट एंडिंग, लेकिन जैसा तय था अंत तो अंत था। टीम बिखर गई,
जैक्सन चले गए, पिपिन ट्रेड हो गए, रॉडमैन रिलीज हो गए,
और जॉर्डन ने दूसरी बार रिटायरमेंट ले लिया। एक महान राजवंश अपने शिखर पर पहुंचकर खत्म हो गया।
उस आखिरी शॉट के बाद की जो शांति थी, उसमें जैसे पूरे दशक की कहानी थी।
बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें इस पूरी कहानी के पीछे के जो मूल्य हैं, जो फलसफा है, तो सबसे पहली चीज क्या दिखती है?
मेरे ख्याल से तो वो जीतने की जिद, हार से नफरत।
हाँ, उनकी वो अति प्रतिस्पर्धी मानसिकता, हर चीज को वो एक पर्सनल लड़ाई बना लेते थे। कोई जरा सी बात कह दे, कोई अपमान कर दे, वो उसको अपनी प्रेरणा बना लेते थे।
और उनकी लीडरशिप स्टाइल भी इसी से जुड़ी थी, है ना, थोड़ी अलग थी।
हाँ, वो प्रेरणा और डर का एक मिश्रण था। वो साथियों को उनकी लिमिट से आगे धकेलते थे। उनका वो कोट है सीरीज में, विनिंग हैज अ प्राइस एंड लीडरशिप हैज अ प्राइस।
वो हमेशा आसान नहीं होता होगा टीममेट्स के लिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काफी कठोर हो सकते थे, पर उनका मकसद हमेशा टीम को बेहतर बनाना था, और नतीजे बताते हैं कि उनका तरीका कारगर था।
हाँ, वो तो है, पर इस महानता की, इस लगातार टॉप पर रहने की कीमत भी चुकानी पड़ी।
बहुत बड़ी कीमत, सीरीज ये भी दिखाती है, वो बेनतहा शोहरत, वो लगातार नजर में रहना, उसका बोझ,
एक तरह का अकेलापन भी झलकता है।
हाँ, मानसिक और शारीरिक थकान, निजी जिंदगी का लगभग खत्म हो जाना, ये चीजें अक्सर दिखती नहीं है।
एक और बात दिलचस्प लगी, उनका वो वर्तमान में जीने का नजरिया।
हाँ, इसमें उनके ट्रेनर टिम ग्रोवर का बड़ा रोल था, सिर्फ अगले पल पर फोकस करना, अगली प्रैक्टिस, अगला गेम।
शायद इतने दबाव में टिके रहने का यही तरीका था।
शायद, और ये भी कि वो असफलता को कैसे लेते थे।
हाँ, ये बहुत अहम है। हाई स्कूल टीम से कट जाना, पिस्टन से हारना, बेसबॉल में संघर्ष,
हर नाकामी ने जैसे उनके अंदर की आग को और तेज किया। वो हार को अंत नहीं मानते थे, वो उसे वापसी का और मजबूत होने का जरिया बनाते थे।
ये एक बड़ा सबक है, लेकिन साथ ही सीरीज ये भी दिखाती है कि वो अकेले नहीं थे, टीम वर्क कितना जरूरी था।
बिल्कुल, स्कॉटी पिपिन का महत्व बार बार उभर कर आता है। वो सिर्फ साइड किक नहीं थे।
नहीं, वो अपने आप में एक महान खिलाड़ी थे।
हाँ, और डेनिस रॉडमैन का योगदान, खासकर डिफेंस और रिबाउंडिंग में, और फिल जैक्सन की वो ट्रायंगल ऑफेंस प्रणाली, उसने पूरी टीम को एक साथ लाया।
तो ये व्यक्तिगत प्रतिभा और टीम सिनर्जी का एक मेल था।
हाँ, एक बहुत नाजुक संतुलन था।
अच्छा, अगर हम इस पूरी यात्रा में 3 सबसे अहम मोड़ या टर्निंग पॉइंट्स चुने, तो पहला कौन सा होगा?
मेरे लिए तो वो 1991 में डिट्रॉइट पिस्टन्स पर मिली जीत ही होगी।
हाँ, क्यों? वहीं से पहले 3-पीट का रास्ता खुला।
सही कहा, मैं सहमत हूँ। दूसरा बड़ा मोड़?
दूसरा शायद 1993, पिता की मृत्यु और पहला रिटायरमेंट।
हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो उनके जीवन का शायद सबसे मुश्किल दौर था, भावनात्मक रूप से झकझोरने वाला।
उसने खेल, शोहरत, जिंदगी सब पर सवाल खड़े कर दिए होंगे।
बिल्कुल, और वो बेसबॉल खेलना भी उसी उथल पुथल का हिस्सा था, एक तरह से खुद को फिर से पाने की कोशिश।
और तीसरा तो शायद सबसे आसान है चुनना।
हाँ, वो आखिरी शॉट, 1998 फाइनल्स गेम 6,
द लास्ट शॉट ऑफ द लास्ट डांस।
बिल्कुल, वो सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, वो पूरे करियर का, उस दबाव में खेलने की क्षमता का, उस राजवंश के शिखर का प्रतीक था। वो इमेज आज भी जहन में ताजा है।
तो इन पलों से, इस पूरी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या सबक हैं इसमें?
बहुत सारे, और ये सिर्फ बास्केटबॉल या खेल तक सीमित नहीं है।
पहला तो शायद यही कि महानता की कीमत होती है।
हाँ बिल्कुल, उत्कृष्टता पाना और उसे बनाए रखना, इसके लिए भारी व्यक्तिगत त्याग करने पड़ते हैं। अकेलापन, बर्नआउट, रिश्तों पर असर, जॉर्डन की कहानी ये सब दिखाती है।
और लीडरशिप के बारे में भी सोचने पे मजबूर करती है।
हाँ, कि लीडरशिप हमेशा लोकप्रिय या सुखद नहीं होती। जॉर्डन की स्टाइल दिखाती है कि कभी कभी कठोर होना पड़ता है, लोगों को उनकी सीमाओं से आगे धकेलना पड़ता है।
पर क्या वो हमेशा सही तरीका है? ये सवाल भी उठता है।
हाँ, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनका मकसद टीम को बेहतर बनाना था।
और असफलता का मूल्य, ये भी एक बड़ा सबक है।
बहुत बड़ा। जॉर्डन ने हर हार को, हर आलोचना को अपनी ताकत बनाया। ये सिखाता है कि हार अंत नहीं है, वो सीखने का और मजबूती से वापसी करने का एक मौका है।
टीमवर्क की शक्ति भी साफ दिखती है।
हाँ?
सबसे टैलेंटेड इंसान भी अकेले नहीं जीत सकता। जॉर्डन को पिपिन चाहिए थे, उन्हें रॉडमैन चाहिए थे, उन्हें जैक्सन की रणनीति चाहिए थी। सफलता हमेशा एक सामूहिक प्रयास होती है।
और दबाव, कैसे इतने ज्यादा दबाव और उम्मीदों के बीच अपना बेस्ट देना है।
बिल्कुल, जॉर्डन का वो फोकस, मुश्किल पलों में शांत रहना, ये वाकई सीखने लायक है।
और आखिर में शायद ये कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, बदलाव निश्चित है।
हाँ, महान राजवंश भी आखिरकार बिखर जाते हैं, सफलता स्थायी नहीं होती। द लास्ट डांस सीजन इसी का सबसे बड़ा उदाहरण था। ये जानना कि अंत करीब है, ये चीज भी प्रदर्शन पर असर डालती है।
ये जिंदगी की सच्चाई है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें 3 सबसे जरूरी बातें, 3 निष्कर्ष निकालने हो, 1 भावनात्मक, 1 बौद्धिक और 1 सार्वभौमिक सीख, तो वो क्या होंगी?
अच्छा सवाल है। भावनात्मक रूप से क्या कहेंगे?
भावनात्मक अंतर्दृष्टि,
इमोशनल इनसाइट।
मेरे ख्याल से ये है कि महानता का सफर अक्सर अंदर से बहुत अकेला और थका देने वाला हो सकता है। बाहरी चमक दमक के पीछे गहरे भावनात्मक संघर्ष, निजी त्याग और यहां तक कि त्रासदियां भी छिपी हो सकती हैं, जैसे जॉर्डन के पिता की मृत्यु और उनका पहला रिटायरमेंट। सफलता की असली कीमत अक्सर दिखाई नहीं देती।
ये बहुत गहरी बात है। और बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल इनसाइट,
बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये होगी कि किसी भी महान टीम या राजवंश की सफलता के लिए असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभा, जैसे जॉर्डन की थी, और गहरी टीम सिनर्जी, मतलब पिपिन, रॉडमैन, जैक्सन की प्रणाली, इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक और जटिल संतुलन साधना पड़ता है।
सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलता।
नहीं, और इस संतुलन को लगातार बनाए रखना ही असली चुनौती है। ये किसी भी क्षेत्र में लागू होता है।
और आखिर में एक सार्वभौमिक सीख जो हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें।
एक अंतर्दृष्टि, यूनिवर्सल इनसाइट, कि असफलता या हार वो आखिरी चीज नहीं है। अगर उसे सही नजरिए से देखा जाए, दृढ़ता और संकल्प के साथ, तो वही हार आने वाली जीतों के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन बन सकती है। गिरकर उठना और पहले से ज्यादा मजबूत बनना मुमकिन है। जॉर्डन का पूरा करियर इसी बात का सबूत है।
ये तीनों ही बातें वाकई बहुत अहम है, और सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं।
बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी के हर मैदान पर लागू होती हैं। ये कहानी सिर्फ बास्केटबॉल की नहीं, ये इंसानी जज्बे की, चुनौतियों की और ऊंचाइयों को छूने की कहानी है।
पहले से लिखा गया टेक्स्ट।
फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकेटा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।